डिस्कोग्राफू कर रहे हो? धागा इस रंग का क्यों लगा रहे हो?
अरे भाई, तुम ही ने तो दिया है। क्या तुम शेर के पिंजरे से निकले हो?
तुम अपना काम करते रहो।
कैसे हो अहमद? क्या बात है, आज किचन में क्यों नहीं गए?
इसने क्या कहा?
तुम चुप रहो।
अगर अगली दफा बकवास की तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। सईद, चाय तैयार है?
जी, आपका हुक्म सर आंखों पर।
सुना तुमने साहब ने क्या कहा? मुझसे पहले छूटना चाहते तो गुस्ताखियां मत करो।
मेरे अब्बा मरहूम अली मर्दान इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि चंद दिनों तक उन्हें होश नहीं आया था और गांव के लोगों को अपने बाल बच्चों की फिक्र लगी हुई थी। इसीलिए छठी रात को जमींदार के यहाँ इकट्ठा होकर मशवरा करने लगे थे कि अली मर्दान को आज कल में होश ना आया तो हमारा क्या बनेगा, और अगर वो होश में आ भी गए और उन्होंने जो कुछ के सोहबत खान ने उनसे जानना चाहा था जबान ना खोली तो क्या होगा। किसी को नहीं मालूम कि सोहबत खान अब्बा मरहूम से क्या जानना चाहता था, लेकिन सबको मालूम था कि अब्बा मरहूम होश में आ भी गए तब भी जबान नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर कुछ बताना होता तो 13 तारीख को ही बता देते। कुछ लोगों ने कहा कि अपने बीवी बच्चों को लेकर रातों रात यहाँ से निकल चलें, और कुछ लोग कह रहे थे कि सबको एक आदमी की जिद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। हर कोई कुछ न कुछ बोल ही रहा था।
ठीक है, जब सब इस बात पर राजी हैं तो रुक जाते हैं करामत, रुक जाते हैं, रुक जाएंगे। मुखिया, बस जो मैंने कह दिया। या अली, या अली। सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। आइए मलिक साहब। या अल्लाह,
या अल्लाह। अब तबीयत कैसी है?
खुदा जानता है।
हमने फैसला किया है कि रुकेंगे।
अगर रुक गए तो जिंदा नहीं बचेंगे मलिक साहब।
कोई भी जगह वतन जैसी नहीं होगी। चले गए तो सारी जिंदगी खौफ और आस में जीना होगा। फरार में करार नहीं है फजल अली, सिर्फ बेकरारी रह जाती है। मर्दानगी और इज्जत का तकाजा ये है कि रुक जाएं।
आपके ख्याल में क्या मेरे बाबा की हठ धर्मी गलत थी?
तुमने तहमासत के बेटे को पहचाना नहीं, मालूम नहीं कि वो कौन थे, लेकिन जो कोई भी थे उनकी गैरत का मामला था। तय पाया कि बच्चों और औरतों को कलह के पीछे वाले गांव में भेज दिया जाए। करामत और एक दो लोग साथ में जाएंगे, काफी तादाद में गोलियां और बारूद लाएंगे। सुबह तक ऊंची जगहों पर हमें मोर्चे बनाने होंगे।
खुदा की अमान रहे।
लेकिन परवेज खान, गैरत भी एक अहम मामला है ना?
हाँ, अपनी डायरी को रख के सो जाओ।
ठीक है, पुराने लोग भी बहुत अच्छे थे, उनमें गैरत थी परवेज साहब।
मेरे मरहूम अब्बा जान ने बड़ी कठिन रात गुजारी। उन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा थी। सुबह का वक्त था कि आखिर उन्हें होश आ ही गया।
मेरी शॉल को खोलो। हो ये क्या है?
ये तो मेरी मरहुमा अम्मी की निशानी है।
निशानी से ज्यादा कीमती है ये। 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है।
ये तो मुझे नहीं पता था।
ये मिराश मेरे वालिद तक पहुंची है। उन्होंने भी मरते वक्त मुझे दी। अब जबकि मेरी मौत करीब है, ये तुम्हें दे रहा हूं।
अम्मी के कंगन की बात तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या?
असद
जी,
अगर उठ गया तो तुम्हें बहुत पीटूंगा।
आखिर प्रवेश साहब, एक चूड़ी की बात लिखी है जिसे मैंने देखा है, लिखा है वो चूड़ी एंटीक है। ये नामुमकिन बात है, उसकी इतनी कीमत हो। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरी आवाज नहीं सुनोगे, तुम आराम से सो जाओ। मैं अब कुछ नहीं करूंगा।
मिराश मेरे वालिद तक पहुंची है। उन्होंने भी मरते वक्त मुझे दी। अब जबकि मेरी मौत करीब है, ये तुम्हें दे रहा हूँ।
आप ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह कल तक आप ठीक हो जाएंगे।
जिलानी पहाड़ जानते हो कहाँ है?
जानता हूँ, यहाँ से 30 फरसक दूर है।
कभी गए हो वहाँ?
जाने की जगह नहीं है, पहाड़ी इलाका है, चोटी तक पहुँचना मुश्किल है।
उसकी चोटी तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। वहां एक किला नजर आएगा।
किला?
मुश्किल रास्ते के बाईस कोई नहीं जानता कि ये लान पहाड़ी के बीच में एक बहुत पुराना किला मौजूद है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसकी बनावट ऐसी है कि हर तरफ से नजर रखी जा सके। दुश्मन उस पर किसी भी तरह कब्जा नहीं कर सकता है।
आपने खुद देखा है?
नहीं, हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था ताकि वक्त पर काम आए, और उनके पास जितना सोना चांदी और कीमती बर्तन वगैरह थे एक कोने में गाड़ दिया था ताकि वक्त पर काम आए, ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। एक कला और जो खजाना उसमें मौजूद है, इस सरजमीन का ऐसा राज है जो अब तुम तक पहुंच रहा है। इस राज को महफूज रखने के लिए पूरी उम्र की मेहनत और कोशिश की जरूरत है। इस राज को महफूज रखने के लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन अपनी इज्जत का गैरों से बिल्कुल सौदा नहीं किया। लेकिन अब इतने साल के बाद वो खजाना सिर्फ सोने चांदी का ढेर नहीं रहा, बल्कि इस सरजमीन की इज्जत है। ये हमारा तुम्हारा भी नहीं रहा, बल्कि हर उसका है जो कि यहाँ की मिट्टी पानी पर हक रखता है। मेरी बात समझ रहे हो ना?
कैसे मालूम जो बातें आपने की हैं वो अफसाना नहीं है?
मुझे अपने बाप की बातों पर यकीन है, और उन्हें भी अपने बाप की बातों पर। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। ये ऐसा राज है जो नस्लों से होता हुआ तुम तक पहुंचा है। ईमान पर है। अगर तुमको ईमान होगा तो तुम्हारे दिल से शक मर जाएगा।
तो आप खुद ढूंढने क्यों नहीं गए?
मैं और मेरे पहले के लोगों ने जब भी ये लान पहाड़ी पर जाना चाहा, या तो ना जा सके या आधे रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि वापस आना पड़ा। इस खजाने का अंजाम मेरे और तुम्हारे हाथों में नहीं है। पता नहीं कौन इसको मिट्टी से निकाल पाएगा। शायद तुम्हारा बेटा, शायद उसका बेटा।
सोबत खान क्या उसी खजाने के लिए आपके पास आया था?
हाँ, वो पता मांग रहा था।
अगर उस खजाने का राज जैसा कि आप कह रहे हैं सीना बसीना चला रहा है, तो इस बात का पता सोबत खान को कैसे चला?
हर खैर के साथ हमेशा एक शर भी होता है। हमेशा से यही होता आया है। राज की खुसूसियत यह है कि बदखा हमेशा उसके फिराक में रहता है। सोबत खान सिर्फ एक शरीर घुड़सवार नहीं है, बल्कि एक दायमी फितना है। इसी तरह होता आया है। कल कोई और होगा और फिर कोई और। सुबह होने से पहले अपनी बंदूक को तैयार कर लो, अपना घोड़ा तैयार करो और सहरा की तरफ निकल लो। या तो ये दान तक पहुंच जाओगे, कला ढूंढ लोगे और खले में एक सदाबहार दरख्त की जड़ को खोदोगे और इस राज तक पहुंच जाओगे, या ये कि जमाना तुम्हें खत्म कर देगा और ये राज तुम्हारे सीने में दफन हो जाएगा और जिसकी किस्मत होगी उसे वो मिल जाएगा। अगर किले तक नहीं पहुंच सके तो इस कंगन को अपने पास रखना। ये उस खजाने की निशानियों में से एक है जो कि तुम्हारे लिए हुज्जत है। जब तुम अपना राज अपने बेटे को सुनाओगे।
परवेज साहब, बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ करना। जानता हूँ सख्त गुस्से में हो, लेकिन ऐसा झटका लगा कि मैं हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे ख्याल में जिंदगी के आखिरी अय्याम में मेरे बाबा थोड़े से वहमी हो गए थे। असल में जो बातें डायरी में लिखी हैं, उनका आपस में कोई रابطہ बिल्कुल नहीं है ना। कितनी अजीब सी बात।
मेरा ख्याल है जेल में अब तक सिर्फ तुम ही रह गए हो जिस पर मैंने हाथ नहीं उठाया, समझे
जी। इसीलिए तो हंसने की जुरात की, वरना किसी भी तरह अपनी हंसी रोक लेता।
मेरी पीठ पे बैठो।
ये जरूरी है क्या?
आओ बैठो पीठ पर।
अच्छा।
मैं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ो। हंसते हो मुझ पर? मैं कह रहा हूँ ना पढ़ो, फिर भी पढ़ रहा है।
तुम दोनों को क्या हो गया? परवेज साहब क्यों मार रहे हैं उसको?
चलो तुम भी तो आओ।
कुछ करो, मुझे ना मारे।
नीचे तो आओ। बोल रहा हूँ कि ना पढ़ो। और बढ़ो ये। आओ, आओ।
अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरा ये हाल ना होता। गलती कर दी परवेज साहब, आप इसे माफ कर दें।
तुम चुप रहो,
मैं इसकी जिम्मेदारी लेता
हूँ। मैं देखता हूँ।
यार कुछ करो।
क्यों मार रहे हो? वो मेरे मोहल्ले का लड़का है।
तो तुम भी आ जाओ। और हंसो।
नहीं, तुम जाओ।
हंसोगे और हंसो।
कहा ना सलामत साहब, ख्वाब में डर के उठा, बेड से गिर गया और गिरते गिरते बैठ के कोने से टकरा गया और बाजू में खराश आ गई।
क्या परवेज वहां थे?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो ना होते तो मेरी हालत तो इससे बदतर होती।
अगर इसको उठाकर मैं क्लिनिक लाना था तो अब तक मर गया होता, ठीक है ना?
जी परवेज साहब। डॉक्टर साहब जरा धीरे धीरे करो। आइए परवेज साहब।
तुम जाओ उधर।
आप बड़े हैं पहले आप।
मैं तुम्हें शराफत से बोल रहा हूँ ना, जाकर उधर बैठो।
अरे खराश है जरा देख के।
मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं सोना चाहता हूँ। आवाज बिल्कुल ना निकालना।
मैं तो उस वक्त सो रहा था।
जो करना है करो, लेकिन मुंह मत खोलना।
शुक्रिया मेरे दोस्त।
ठीक है
अहमद, चुप रहो।
कर लड़ना नहीं चाहते?
मैं चाहने पर मजबूर हूँ।
क्यों?
मैं बता नहीं सकता।
तुम डर गए हो?
मैं और डर?
फिर क्या बात है?
कुछ ऐसा है जिसे जाकर मुझे मालूम करना है।
बाद में चले जाना।
अगर रुका तो शायद जिंदा नहीं रहूं।
मैंने कहा ना, तुम डर गए हो। मैं जा रहा हूँ, सबको बताता हूँ।
जाकर तुम क्या कहोगे? मैं कहां जा रहा हूं, नहीं चाहता किसी को पता चले।
डरपोक।
जिस सोहबत से डर नहीं लगता, जरूरी काम है जा रहा हूं।
झूठे कहीं के।
तुम जानते हो सोहबत खान किस लिए आया था?
किस चीज के लिए?
खजाने के लिए।
कहां है खजाना?
बाकी एक ऐसा राज है जिसे मैं नहीं बता सकता। जब तक कि मैं चला नहीं जाता, तुम अपना मुंह बंद रखना। किसी ने पूछा तो बोलना मुझे नहीं मालूम। अब जाओ, तुम जाओ।
खजाना मिला तो उसका क्या करोगे?
अगर खजाना हुआ तो सबको मिलेगा।
क्या मुझे भी मिलेगा?
सबको मिलेगा।
अगर मुझे ज्यादा मिलेगा तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा।
अच्छा, जाओ भी तुम। क्या पूरे गांव में ढिंढोरा पीटना चाहते हो? जाओ।
तुम चाहते हो कि कह दूं कि कोई अली मर्दान के साथ रुक जाए?
कहना उनका जनाजा जल्दी दफन कर दें। उनकी फातह खानी किसी मुनासिब मौके पर मैं करवा दूंगा। खुदा मेरी गलतियों को माफ कर दे। जाओ, चलो चले।
लगाए बैठे थे कि सोहबत खान और उसके चेले गांव के सामने वाले रास्ते से आएंगे, लेकिन उनका काफिला तो गांव के पीछे वाले रास्ते से आ रहा था। ये वो रास्ता था जो गांव के ऊपर वाले पहाड़ की तरफ जाता था। अगर सोहबत खान पहाड़ तक पहुंच जाता तो उसे गांव पर कब्जा करने में एक मिनट की देरी भी नहीं लगती, और कबल इसके कि गांव के लोग मुतवज्जे होते और उसकी तरफ पलट कर जाते, वो सबका कत्ले-आम कर चुका होता। यहाँ पर मुझे कतई फैसला करना था।
चलो,
वापस आते हुए मुझे लगा कि मैं भी उन आदमियों की तरह हो गया हूँ, बकौल अब्बा मरहूम के, जो भी पहाड़ की तरफ गए लेकिन किस्मत ने।
अरे ये मैं हूँ, मत मारो, मैं हूँ, मुझे मत मारो, मैं हूँ, मत मारो, मैं हूँ, ये मैं हूँ।
जमींदार कहाँ है?
वो उस तरफ ऊपर गए।
कहाँ?
तुम्हारे घर की छत पर।
चलो।
अब तुम कहाँ जा रहे हो?
जमींदार साहब, बेहतर है कि ना जाने।
अंजाम कोई नहीं जानता, जिसको जैसे समझ में आया लड़ा। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मोर्चे खोते जा रहे थे और हम अपने गांव वालों की लाशों को उठाते जा रहे थे। सलामत ने होशियारी दिखाई और दुश्मनों की गोलियों के बीच गांव से निकल गया और मुझे भी अपने साथ ले गया।
चलो 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 चलो।
अहमद
जी परवेज साहब,
उठो नाश्ता तैयार करो।
11 बज रहे हैं, नाश्ता कहां से लाऊं?
अगर नहीं मिला तो तुझे नमक लगाकर खा जाऊंगा। दोपहर तक ये जगह बिल्कुल साफ हो जाए।
मैंने पिछले हफ्ते सफाई की थी।
कल रात की बदतमीजी की वजह से इस हफ्ते भी सफाई करोगे? उठ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम।
क्या है?
अगर तुम्हें पता चले कि मेरे अब्बू कैसे गबरू जवान थे तो मेरे आशिक हो जाओगे। अलबत्ता हर गुल चीज अखरोट नहीं होती, हमारी रगों में भी अब्बू का खून दौड़ रहा है।
मतलब पढ़ाओ।
तुम उनकी डायरी को पढ़ना चाहोगे? थोड़ा सा अफसाना है लेकिन बहुत दिलचस्प है।
चुप रहोगे या मैं उठूं?
भाईजान इसको नाश्ता नहीं मिल रहा।
मालूम है,
बहाना ढूंढ रहे हो ताकि नासिर अब्दुल नकास वाले मामले का बदला लो।
और क्या,
किसी और वक्त पे नहीं छोड़ सकते? आप तो वैसे भी बहाना घड़ने में माहिर हैं।
वजह?
देखिए, उसका एहसान है मुझ पर, चुकाना चाहता हूं ताकि बाद में एहसान मंद ना रहूं। मेहरबानी होगी।
हसन फेखन,
मैं आपका खादिम हूं।
नाश्ता तैयार है?
जी हाँ तैयार है, सुबह सवेरे ही तैयार कर दिया था।
परवेज खान यारों के यारों, तुम सलामत रहो।
जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला मैं किले के पीछे के किसी गांव में हूं। लड़ाई की खबर गांव में हर तरफ फैल चुकी थी। सब यही कह रहे थे कि अली मर्दान का बेटा फजल अली इस जंग का वाहिद बच जाने वाला मर्द है। मेरे जिंदा रह जाने की बात जब मुंह दर मुंह होते हुए सोबत खान तक पहुंची तो वो मुझे ढूंढने निकल पड़ा। उसका ये कहना था कि नामुमकिन है कि अली मर्दान ये राज अपनी कब्र में ले गया होगा। मुझे जिंदा पकड़ने पर इनाम तो रखा ही कि जिसकी वजह से लालची लोग मुझे घर घर ढूंढने लगे और मुझे अमान नहीं थी। मेरी कमर में जो गोली लगी थी उसके बावजूद मैं चल पड़ा और इधर उधर भटकते हुए अपने शहर से दूर गया। बरसों बाद जाके सोबत खान के फितने से मुझे निजात मिली, लेकिन अब्बा मरहूम के बकौल हर खैर के पीछे एक शर होता है जो कि हमेशा मौजूद रहता है।
कौन हो तुम?
मैं कौन हो सकता हूँ?
मैं मनुचेहर हूँ।
मनुचेहर हो?
अब मनुचेहर के दिन बदल गए थे और खजाने के बारे में कुछ कहे बगैर वो मेरे पास था और मेरी तीमारदारी कर रहा था और खिदमत भी।
अबूजान आपके कलम का क्या कहना, क्या अफसाना लिखा है।
अरे मनुशहर,
क्या है?
इधर आओ।
मनुचेहर दिल पर पत्थर रखकर उस दिन का मुंतजर था जब मैं खजाना ढूंढने गांव लौटूं, लेकिन कमर में लगी गोली मुझे दिन ब दिन कमजोर करती जा रही थी। लेकिन एक दिन
अच्छे से पी लिया ना, चलो चल के आराम करो।
चलो
लेकिन एक दिन मनुचेहर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और पूछने लगा,
फजले अली
क्या है?
एक चीज है।
कौन सी?
ये
कंगन है, लो मुझे दो।
मैं ये कह रहा था कि इसका रब तो उसी खजाने से है।
किस खजाने से?
वही खजाना जो तुमने 10 साल पहले बताया था।
पहले नरमी और फिर सख्ती के साथ खजाने का पता पूछने लगा। तब समझ में आया कि बाबा की बात दुरुस्त है और फितने की शक्ल बदल गई है। सोबत खान की जगह मनुचेहर ने ले ली है।
Thank you.
में उसको छोड़कर चला गया, लेकिन ज्यादा खुश नहीं था। यहां तक कि तुम्हारी मां से शादी की और दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन गया। जब उसको अपना किस्सा सुनाया तो कहने लगी, चलो तेहरान जैसे दूर शहर में चले। अब तुम ही हो कि या इस राज को सीना बसीना आगे तक पहुंचाओगे, या ईरान की पहाड़ी पर जाकर मेरी सरजमीन का खजाना उसमें से निकालोगे। तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूंगा। वस्सलाम।
बहुत दिलचस्प कहानी थी अब्बू जान, खुदा गरीब की रहमत करे। काश के हम भी आपके जमाने में रहते हैं। अल्लाह। अरे यार,
करीम चचा, खादिम हूं।
बहुत कोशिश की लेकिन किचन से एक रोटी भी नहीं निकाल पाया। वहां के चौकीदार बहुत अलर्ट थे।
तो मुझे क्या?
तुम्हारी वजह से हम परवेज के चंगुल में फंसे।
चंगुल में नहीं हो?
किसने कहा कि नहीं फंसा?
नहीं फंसे हो?
उससे बात की है?
हाँ।
देखो, परवेज का तो मामला साफ हो गया, अब रहती है तुम्हारी और मेरी बात।
कोल्ड स्टोरेज की रोशनदान का कह रहे हो?
हाँ।
नहीं कहो।
क्यों?
बाबा के स्वयं पर तुमने जो बात कही थी मुझे अब तक याद है। सबके सामने कहा था कि हम सदके के लायक भी नहीं।
एक बार तुमने कहा और मैंने माफी मांग ली।
मैंने भी कहा था अभी साहब बाकी है।
कल मेरी मर्दानगी ने तुम्हें बचा लिया था।
मैंने भी बदला चुका दिया वरना गुरूब तक जिंदा ना रहते।
ये तुम्हारी आखिरी बात है ना?
मैं तुमसे आखिरी बात आखिर में कहूंगा। फिलहाल इसको अच्छी तरह याद रखो।
अंजाम बुरा होगा असद।
अपना तरीका बदल लो अहमद, तुम शरायत पर नहीं उतरते हो।
असद, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है।
सलामत साहब, आज तो बुध नहीं है।
चलो, मिलने वाला बैठा है।
जी आया। रुको, वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम निजात के फरिश्ते।
तुमने फजले अली की डायरी पूरी पढ़ ली?
क्यों पूछ रहे हो?
वैसे ही।
हाँ पढ़ी, बहुत दिलचस्प थी। सिर्फ ये पता नहीं चला कि कहां पर उसकी हकीकत थी और कहां पर उसका अफसाना।
खूब।
क्या खूब?
अब क्या करना चाहते हो?
बताओ तो जरा।
अब वो सच कह रहे थे कि तुम उनको दर दर ढूंढ रहे थे?
फर्ज करो कि सच कह रहे थे
और फिर तुमको बताए बगैर छोड़ के चले गए।
अब फर्ज करो कि अब्बू ने सच ही लिखा हो। क्या तुमको यकीन है कि एक जगह पर इतना बड़ा खजाना दफन है?
फर्ज करो कि दफन है।
तुम पुराने लोग भी बड़े दिलचस्प हो, ऐसी बातों पर यकीन करते हो कि इंसान दंग रह जाता है। देखो बेअदबी माफ, ये किस्से पुराने जमाने के हैं जिन पर कोई आजकल तवज्जो नहीं देता। आजकल पाइपों का दौर है, लाइटों का जमाना है, फलक बोस बिल्डिंगों का, टेलीफोनों का और नई नई कारों का दौर है, समझे? इंसान अपोलो के जरिए चांद तक पहुंच चुका है, तुम किस दुनिया में रहते हो? कुछ और कहूं क्या?
कल तुम्हारे घर की सनद मेरे नाम लिख दी गई।
मुझे लगा था तुम्हारी गैरत तुमको मेरा घर अपने नाम करने की इजाजत नहीं देगी।
जानता हूं, क्या तुम चाहते थे कि पैसे भी दे देता और मकान भी ना लेता, उन 3 लाख तुमान की तरह जो 9 महीने पहले दिए थे? क्यों, ये बात मान ली जाती अगर तुम उस 60 पेज वाली डायरी का किस्सा मुझे बता देते, जब तक कि मुझे ये पता ना चलता कि फजले अली ने अपना राज किसको बताया है और किसको नहीं बताया है। तुम जो भी कहते मैं करता चला जाता ताकि तुम मेरे कंट्रोल में रहो, लेकिन अब बात बदल चुकी है। डायरी तुम्हारे पास है पर घर मेरे पास है।
हसन साहब को घर के 5 लाख तुमान दे दिए?
हाँ।
2 महीने बाद आजाद होकर तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा और बकिया पैसे ले लूंगा। अगर तुम अब्बू का एहसान चुकाना चाहते हो तो घर वापस करके अपने पैसे किस्तवार ले लें।
वो 60 पेज वाली डायरी मुझे दे दो और घर के कागजात ले लो। समझ लेना कि तुम्हें घर मुफ्त में मिल गया।
तुम वाकई में इतने अहमाकों के सोचते हो कि किसी जगह पर इतना खजाना दफन है?
चलो ऐसा ही समझ लो कि मैं इतना बेवकूफ हूँ। तुम डायरी दे दो और अपनी जान छुड़ा लो।
गुंडा टैक्स चाहिए?
तुम इसको जो नाम देना चाहो दे लो।
ऐसा है क्या? अगर डायरी ना देना चाहो तो तुम क्या कर लोगे मेरा?
बेहतरी इसी में है कि दे दो।
नहीं देता। क्या कर लोगे? बाकी का पैसा नहीं देंगे? ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। समझते हो कि तुमने हमें घुस के चालाकी दिखाई ताकि घर को हमारे चंगुल से निकाल सको? मैं अपने अब्बू की तरह नहीं हूँ कि दर बदर तुमसे भागता फिरूं, समझे? मैं असद हूँ, 2 महीने बाद इस पर आ जाऊंगा, वहां आके वो हश्र करूंगा कि मेरी शक्ल से भी डरोगे तुम, समझे? और हाँ सुनो, वो घर भी हमने असली कीमत से बहुत कम पर बेचा है। हम बहुत घाटे में रहे हैं जनाबे अली, और कब्जा देने के लिए भी तुमको इतना दौड़ाऊंगा कि घर में दाखिल होने से पहले तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओ।
मुझे सिर्फ वो वाली डायरी चाहिए और कुछ नहीं।
वो तो तुम्हें ख्वाब में भी नहीं मिल सकती है।
ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?
मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है, चले जाइए। याद रखना, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर क्या होगा? जाओ यहाँ से।
सनद का फायदा यह है कि अदालत से उस पर घर खाली करवाने का ऑर्डर लिया जा सकता है। मेरा एक जानने वाला है जो जुमेरात तक घर खाली करवाने का ऑर्डर ले सकता है। हफ्ते के रोज तक की तुम्हें मोहलत देता हूँ। इतवार के दिन तुम्हारी माँ और बहन सामान समेत सड़क पर होंगे। मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ ने कल ही तुम्हारा जुर्माना भर दिया है और मोहल्ले में भी तुम्हारी आजादी की मिठाई बांटी है। इस लिहाज से उनके पास घर किराए पर लेने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तेहरान में भी तुम लोगों का कोई नहीं है जिसके पास जा सको, लिहाजा बुरा वक्त उनके इंतजार में है। हमारे झगड़े में उनको मत जलाओ तुम। फजले अली को ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन ढूंढ ही निकाला मैंने। आजमाए हुए को दोबारा आजमाना खाता है, इसीलिए उनकी मौत का इंतजार किया मैंने। फजले अली की मौत के बाद नहीं जानता था कि मद्द मुकाबिल कौन होगा, लेकिन तुम बेवकूफ हो जिसने अपना राज फाश कर दिया। अब तुम्हारा मद्द मुकाबिल मैं हूँ। अकलमंदी से काम लेना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखो, वरना फजले अली की तरह सारी उम्र सख्ती और दरबदरी झेलने को मजबूर हो जाओगे, और इसका खमियाजा भी तुम्हारे घर वालों को भुगतना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है।
हम मोहल्ले के इज्जतदार लोग हैं।
जानता हूँ, तुम अपनी इज्जत को बचा कर रख सकते हो।
माँ दिल की मरीज है, सारी उम्र तुम्हारी वजह से अजाब में रही, सामान सड़क पर गया तो मर जाएगी वो।
ये तुम्हारे हाथ में है कि उनका क्या बनता है।
डायरी देना भी चाहूं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए नहीं तो मेरी माँ के लिए ये डायरी उनकी और अब्बू की जिंदगी जितनी ही अजीज है। जिंदगी भर सख्ती झेली है कि ये तुम तक ना पहुंचे। अगर तुम्हें ये डायरी दे दी तो वो मुझे कभी नहीं बख्शेंगी, कभी नहीं बख्शेंगी।
ये तुम्हारा अपना मसला है।
मनुचर, अपनी जिद छोड़ दो। मनु चेहर,
فکرم